أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللانة دائمة الباقي لعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات من أكبر الله. أزاي سيد الشهداء وسیلے سے فیملی لائف کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ چوتھی مجلس ہے اس سلسلے میں. بات شروع ہوئی تھی فیملی لائف کے سسٹمز کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں بھی گفتگو رہی، اور یہ کہ فیملی لائف میں اگر سکون حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی رہے، ایک ہی پیج پر رہیں جہاں تک ان کے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور خصوصاً اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے فرض الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اچھائی کی طرف لے جائیں، انکریج کریں اور انہیں برائیوں سے روکیں، یہ دوسروں کے لیے تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ فریضہ جو ہے وہ صرف سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اردو میں ہم لوگ عام طور سے میرج لائف میں کہتے ہیں بھائی یہ ہم سفر ہیں. ہم سفر میں وہ سفر صحیح اس وقت چلے گا جب ہم آہنگی ہو، ورنہ اگر دونوں کے ڈیسٹینیشن الگ ہوں تو پھر وہ ہم سفر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ عنوان جو ہے اس میں یہی ہے کہ جہاں جہاں ڈائیورژن ہو آپ کو دوبارہ صحیح راستے پہ آنا ہوگا، ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. تو اسی عنوان کو دیکھتے ہوئے ایک مثال، ہم کل وقت نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے، واقعات کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں کچھ شہداء کربلا ہیں کہ جن کی شہادت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی بنیاد وہ ہمت ہے جو ان کی بیویوں نے انہیں دی ہے. ہم لوگ اس کو اتنا تاریخ میں اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، اسی مثال سے ہم شروع کرنا چاہیں گے تاکہ موضوع اور آگے بڑھ سکے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. امر بالمعروف و نہی المنکر سے مراد یہی ہے کہ بھئی جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں نیکی کو ذرا ہلکا سمجھا جاتا ہے تو آپ انکریج کریں. نہی المنکر سے مراد یہ کہ جہاں برائی ہو رہی ہے اسے آپ روکیں. مشہور نام شہدائے کربلا میں زہیر قین کا ہے, سبھی سنتے ہیں بچپنے سے. زہیر قین حسین کے ساتھ روزے اول سے نہیں تھے, یہ بھی اپنا حج مکمل کرنے کے بعد اسی ڈائریکشن میں چلے ہیں. امام تو 8 ذوالحج کو چھوڑ چکے تھے مکہ, یہ بعد میں چلے ہیں اپنے عشیرے اور قبیلے کے ساتھ. کوفہ کے رہنے والے ہیں یہ, اور ان کا گروپ بہرحال ایک چھوٹا سا قافلہ تھا, تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے یہ لوگ. ایک وہ منزل آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کارواں اور زہیر بن قین کا کارواں جو ہے تقریباً پیرلل بیسس پہ چلنے لگا, اور امام نے پوچھا بھی یہ کس کا قافلہ ہے. جب بتایا گیا کہ زہیر قین جہاں بھی رکتے تھے قافلے, وہاں بھی امام دیکھتے تھے کہ وہ اپنا قافلہ جو ہے دور روک رہا ہے. ایک دو بار پوچھا بھی کہ زہیر آخر ہم سے ملنے کیوں نہیں آ رہا ہے, اور یہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچے ہیں جسے زرود کہتے ہیں. یہ جو مختلف منازل ہیں مکہ سے لے کے کوفہ تک, منزل زرود پہ روایت جو ہے یہ سنی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ امام اب خود ہی جو ہیں پہل کرتے ہیں. ایک عنوان ہم نے کل کہا تھا کہ خصوصاً حر کے عنوان سے کہ امام نور کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جہاں جہاں پوٹینشیل اور ظرفیت دیکھے انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. ہم کم سے کم اپنے وہ ظرفیت تو پیدا کریں کہ امام ہماری طرف توجہ کریں. مختلف لیول کی بات ہو رہی ہے. حر کے سلسلے میں آپ نے دیکھا پانی کے انتظام اہتمام جو کیا تھا امام نے. زہیر کے بارے میں بھی بار بار امام کا یہ پوچھنا ہے کہ جی کیوں نہیں آ رہا ہے, مطلب ایک امام جانتا تھا کہ بھائی یہ باطنی طور پہ یہ ٹھیک آدمی ہے لیکن یہ اس کی یہ حرکت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. زرود کے منزل پر جب یہ قافلے رکے ہیں تو اس میں روایت ہے کہ امام خود ایک قاصد بھیجتے ہیں اس کے قافلے کے پاس. وہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بڑے ٹینٹ میں بیٹھے تھے تمام حضرات, کھانے کا وقت تھا. نحن جلوس نتغد من طعام لنا اذ اقبل رسول الحسین حتی سلم و ثم دخل, کہ ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے یہاں تک کہ حسین کا قاصد آیا, سلام کیا اس نے اور ٹینٹ میں داخل ہو گیا, اور اس نے پھر پیغام بھیجا امام کا, یا زہیر بن القین ان ابا عبداللہ الحسین بن علی علیہ السلام بعثنی الیک لتعتیہ, اے زہیر قین ابا عبداللہ الحسین نے مجھے بھیجا ہے قاصد کی حیثیت سے کہ ہم تمہیں پیغام دیں کہ وہ چاہتے ہیں تم آ کے ان سے ملو. الفاظ تاریخ کے عجیب غریب ہیں. فطرها كل انسان ما في يده حتى كانها على رؤوسنا الطير, انہیں میں سے ایک بندہ جو ہے روایت کرتا ہے کہ ہم جتنے وہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارا ہاتھ جہاں تھا وہیں پہ رک گیا, لقمہ جہاں لیے ہوئے تھے وہ ہاتھ سب کا اسی طرح سے رک گیا. ایک لحاظ سے شوق کے سچویشن میں تھے. کاننا علی رؤوسنا الطیر, لگتا تھا کہ ہمارے سروں پہ کبوتر بیٹھا ہے اور ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھی شوق کی حالت میں بھی یہ تعبیر عربی میں آتی ہے, کبھی کبھی خوف کی وجہ سے بھی آتی ہے. عمر ابن بدھ نے جب چیلنج کیا تھا تو صحابہ کی حالت یہی تھی. طبری کی روایت ہے کہ یہ اس طرح سے یہ موشن لیس بیٹھے تھے کان اعلیٰ رؤوس مطیر. تو خیر اس حالت میں آپ سوچ لیں کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے कि हुसैन इब्न अली जो है जुहैर बिन कैन के लिए कासिद भेजेंगे और वो इनिशिएट करेंगे कि भाई तुम आओ मुझसे मिलने के लिए। बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी। आवाज़ किसकी बुलंद होती है वहाँ पे? दलहम बिनत आम्र, जुहैर कैन की जोजा, उनकी आवाज बुलंद हुई, अपने शोहर से मुखातब होती है। सुभान अल्लाह, अयबअसु इलैक इब्न रसूलिल्लाह थुम्मा ला ताती, कि ये तो अजीब सी बात है कि फर्जंद रसूल आपको बुलाए और आप नहीं जाएंगे। लो अतैतुहु फसमित मिन कलामिही थुम्मा इनसरफ्त, कम से कम जाके इमाम से मिलो, उनकी बात तो सुनो, फिर जो करना है करना। ये जोजा है जो हिम्मत दिला रही है जुहैर कैन को कि यू कांट बी इनडिफरेंट, जब हुसैन पुकार रहे हैं तो जाइए आप। और यहां पर जो है फिर जुहैर कैन उठे, उस कासिद के साथ गए, वहां गुफ्तगू क्या हुई हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और जुहैर में, वी डोंट नो, इसलिए कि तारीख में लिखा नहीं है। लेकिन उनके जो उनका रिएक्शन जो है, वो वापस आए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक लिहाज से वो खुशखबरी अपने लेके आए हैं, और वो यही थी कि भाई हमें शहादत और जन्नत मिलेगी। लेकिन फिर अजीब अजीब उन्होंने काम किया, अपनी जोजा से उस वक्त कहते हैं फ़ानति तालिक फ़ाइलहिक बेहलिक, वो उस वक्त अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने जुमला कहा था हमें इंकरेज किया था और हम जा रहे हैं, कहने लगे नहीं, ये एक अजीब सिचुएशन है, बहुत ही अनयूजुअल तलाक की बात हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जोजा उनके साथ जाए और वो मसाइब जो अहले हरम बर्दाश्त करेंगी उनमें वो शरीक हो सके। उस खातिर जो है उन्होंने कहा कि हमने आपको आज़ाद कर दिया, अपने ख़ानदान वालों से कहा कि इनकी हिफाजत करना, कूफे तक ले जाना जो भी शरायत होते हैं। और तो उस वक्त जो है उसके बाद ख़ुद जनाब जुहैर कैन ऐलान भी करते हैं कि मैंने इरादा कर लिया है कि हम आप हजरात को छोड़ के जाएंगे हुसैन के पास और अपनी जान को उनकी कदमों में निसार करेंगे ताकि हम जन्नत में बुलंद मर्तबा हासिल कर सकें। उनकी जोजा उस वक्त कहती हैं फ़कामत इलैही व बकत, खड़ी हो जाती हैं, रोती हैं, खुदा हाफिजी करती हैं शोहर से, और उस वक्त एक जुमला कहती हैं खार अल्लाहु लका, खुदा ने तुम्हारे लिए सआदत मंदी अता की है, इख्तियार किया है तुम्हारे लिए। असअलुकान तस्कुरुनी फिल क़ियामा इंद जद्दुल हुसैन, तुम अभी जा रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, सही है, लेकिन याद रखना क़ियामत के दिन मुझे भूलना मत, रसूलुल्लाह के हुसैन के जद के सामने मुझे याद करना ताकि हमें भी शफाअत के ज़रिए तुम्हारे साथ मैयत में ये मर्तबा मिल सके। सलावात पढ़ने एक बार, जुहैर कैन आ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले में। और इससे पहले अकीदे के एतबार से मशहूर था कि ये उस्मानियुल हवा हैं, हवा से मुराद इंक्लिनेशन, रुझान। उस्मानियुल हवा ये थर्ड खलीफा के कत्ल के बाद मुसलमानों को आम तौर से तकसीम किया जाता था कि ये उस्मानियुल हवा है या अलवियुल हवा है, यानी इनका रुझान अकीदे में जो है उस्मान की तरफ है, उसे मज़लूम समझते हैं, या ये वो लोग हैं जो अली की तरफ इनका रुझान है, शियों की जो बात हो रही है। उस ज़माने में मशहूर यही था कि जुहैर कैन जो हैं वो उस्मानियुल हवा हैं, लेकिन ये जोजा की हिम्मत अफजाई थी जो उन्हें इस राह पे ले गई, और आशूर के दिन वो मर्तबा उन्होंने पाया है कि हुसैन इब्न अली ने जब अपने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम किया है میسرا میمنا اور قلب, یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ دی سینٹرل فلینک اپنے لشکر کے, تو اس میں جناب حبیب کو میسرا کا سردار بنایا اور میمنا کی سرداری زہیر قین کو دی ہے, اور سینٹرل فلینک جو تھا اس کے علمداری اس عباس کو ملی تھی. تو یہ آپ دیکھیں عروج جو ہے چند دنوں کے اندر اندر, جس طرح سے حر کے بارے میں ہے, یہاں جو فیملی لائف کے حوالے سے جو ہم پوائنٹ کرنا چاہیں گے وہ یہی ہے کہ شہداء کربلا میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اس مرتبے میں فائز ہوئے ہیں اپنی زوجہ کی ہمت افزائی کے ذریعے. صلوات پڑھنے کے بعد ایک بار اور صلوات پڑھ لیتے ہیں. خداوند عالم نے اس ازدواجی رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26 20-26 میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے, جس میں آسمان و زمین کی خلقت کی بات ہے, انسان کی خلقت کی بات ہے, لیل و نہار کی بات ہے, برق و باران کی بات ہے, انسان کے رنگ اور زبان میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی خدا کہتا ہے کہ یہ ہمارے قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. سب آدم حوا سے ہیں لیکن آپ دیکھیں سب کے رنگ میں مختلف ہیں, زبانیں بھی مختلف ہیں. اسی میں ایک نشانی جو خداوند عالم بیان کرتا ہے, اعلان ہو رہا ہے وہ من آیاتہ, کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ خدا نے تمہارے جوڑے جو ہے شادی میں تم میں سے پیدا کیے ہیں, لتسکنوا الیہا, تاکہ اس ازدواجی رشتے میں انسٹیٹیوشن آف میرج میں تمہیں, تسکنوں سے مراد یہاں سکون, سکون حاصل ہو, پیس اینڈ ٹرانکوئلٹی حاصل ہو. اور اینڈ میں ارشاد ہو رہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس ازدواجی رشتے میں بھی جو صاحبان فکر ہیں وہ غور کریں تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ایک جملہ ہم نے غالباً پرسوں کہا تھا, دو افراد جو بالکل اجنبی ہیں, الگ الگ فیملیز کے ہیں, الگ الگ خاندان کے ہیں, بلکہ ممکن ہے الگ الگ قبیلے کے ہوں, لیکن ایمان کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں, اور پھر ان کے ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے, میرج کے بعد اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور اتنا قریب نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے, تو خود یہ خدا کہتا ہے کہ اس انسان میں جو تبدیلی آتی ہے شادی کے ذریعے, خود یہ جو ہے خداوند عالم کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے. صلوات پڑھنے ایک بار ہو. انسان خاندان میں پیدا ہوتا ہے, بہت سے رشتے ہوتے ہیں, لیکن خدا نے جس طرح سے اس رشتے کی تعریف کی ہے اور اسے پریفرنس دیا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. آپ اگر آپ دیکھیں مثلا ایک بنیادی فرق کیوں خداوند عالم نے شادی کے رشتے کو اتنا اہمیت دی ہے اور اس کی تعریف زیادہ کی ہے, اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا نانی, بھائی بہن, چچا, پھوپھی, ماموں, یہ تمام رشتے داریاں ہیں, اور یہ سب وہ ہیں خونی رشتے ہیں, لیکن ان تمام رشتوں میں اور شادی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا خداوند عالم نے ہم لوگوں کو فارم دیا تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ بھائی کس کانٹیننٹ میں پیدا ہونا ہے, کس قبیلے میں پیدا ہونا ہے, کس خاندان میں پیدا ہونا ہے, یہ سب کچھ نہیں تھا, اس کی مرضی کی بات ہے. خلق و امر جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ تمام رشتے, ماں کون ہے ہماری, باپ کون ہے, دادا دادی کون ہے, نانا نانی کون ہے, بھائی بہن کون ہیں, یہ تمام رشتے جو ہیں جبر کی بنیاد پہ ہیں. وی ڈن ہیو اے چوائس, किसी ने आके पूछा नहीं था कि आपको किस कबीले में, किस खानदान में, दुनिया के किस इलाके में पैदा होना है. नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है जिसको खुदावंद आलम ने इख्तियार की बुनियाद पर पैदा किया है, और वो शौहर और बीवी का रिश्ता. इसलिए इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दी गई है, इसलिए कि इसमें इख्तियार का पहलू है, जबर का पहलू नहीं है. अगरचे हमारे कभी कभी जवान जो हैं, इसको भी जब नसीहत की जाती है कि भाई ये रिश्ता सही नहीं है तुम्हारे लिए, कहते हैं मौलाना क्या करें, मजबूर हैं. भाई इसी में तो अल्लाह मियां ने इख्तियार दिया है, इसी को आप कह रहे हैं कि आप मजबूर हैं. तमाम रिश्ते जो है मजबूरी की बुनियाद पर है, लेकिन ये रिश्ता जो है इख्तियार की बुनियाद पर है. इसलिए खुदावंद आलम ने इस दवाजी रिश्ते को सराहा है कुरान में. सलावात पढ़ने के बाद यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन को ज़रा हम क्लियर कर दें. अक्सर ये नॉन मुस्लिम्स हम लोगों को, खुसूसन मुस्लिम कल्चर में, चीज़ों को देख के हम लोगों को इल्ज़ाम देते हैं कि भाई इस्लाम में जो है ये अरेंज मैरिज, ये जो है ये फोर्स्ड मैरिज है. अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, और इसको समझाना ज़रूरी है. अरेंज मैरिज से मुराद ये नहीं है कि आप लड़की और लड़के को जो है मजबूर करते हैं. इस रिश्ते की बुनियाद ही इख्तियार पे है. अरेंज मैरिज से मुराद ये है कि वालिदैन अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अब मेरा बेटा या बेटी इस काबिल हो गई हैं कि वो शादी करें, तो हमें उन्हें उनकी मदद करनी है, उनकी शादी में फैसिलिटेट करना है. इस प्रोसेस को इम्पोज नहीं करना है, फैसिलिटेशन कुछ और है, फोर्स करना कुछ और है. खुदावंद आलम ने वो जो मशहूर आयत अक्सर निकाह के वक्त पढ़ी जाती है, उसमें यह है कि قال الله سبحانه وتعالى فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. उसमें जो पहला लफ्ज़ है فأنكحوا, इसको अगर आप अलिफ पर ज़बर के बगैर, अलिफ पर फतह बगैर पढ़ें, उसको साइलेंट समझें, फन की हो, उसका मतलब ये होगा कि तुम में जो सिंगल हैं लड़के और लड़की, वो शादी करें. लेकिन लफ्ज़ फन की हो नहीं है, फन की हो ज़बर है अलिफ पर. इसका मतलब ये कि यहाँ खिताब जो है सिंगल लड़की और लड़कियों से नहीं है, खिताब माँ बाप से है, कौम के बुज़ुर्गों से हैं, ख़ानदान के बुज़ुर्गों से है कि आप में जो सिंगल हैं इस काबिल हैं कि अब शादी करें, आप उनकी शादी कराएं. इन यकून फ़करा, अगर वो फ़कीर हैं तो ये फ़क्र जो है ये शादी के सिलसिले में रुकावट न बने. युग़नीहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिही, खुदावंद आलम इन्हें अपने फ़ज़ल के ज़रिए बेनियाज बना देगा, इसलिए कि अल्लाह वासे और हलीम है. इस्लामी तसव्वुर यह है कि कभी कभी मर्दों की रोज़ी जो है बंधी हुई है बीवी के साथ. वो सिंगल आदमी मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, एक तरीका यह है कि जाके शादी कर लो. ये नहीं, गारंटीड नहीं है, ये नहीं कि आपके ये एक किया हमने लेकिन कुछ हुआ नहीं तो अब दूसरे के पास दूसरे सिलसिले में जाए. नहीं, हमारे यहाँ रिवायात में है कि अक्सर जो है मर्दों की रोज़ी जो है वो बीवी के किस्मत में है. तो ये जो खुदावंद आलम का कहना है कि इन यकून फ़करा, कि अगर ये फ़कीर हैं तो फ़क्र जो है ये शादी में रुकावट नहीं बननी चाहिए. सिंपल लाइफस्टाइल से शुरू करें, मेहनत करें, दूसरे एक दूसरे की मदद करें, खुदावंद आलम अपने फ़ज़ल से उन्हें नवाजेगा. सलावात पढ़ दें एक बार और. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खुदावंद आलम ने माँ बाप को, बुज़ुर्गों को, कौम के बुज़ुर्गों को ये कहा है कि इनकी शादी कराएं. लेकिन शादी कराने का मतलब ये नहीं है कि फ़ोर्स मैरिज की बात हो रही है, بلکہ ہماری یہ شادی کی بنیاد ہی اختیار کے اساس پہ ہے. سیرت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, دو مثالیں جو آپ کے نظروں کے سامنے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم لوگ اس لحاظ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم آپ کو کوئی نئے واقعات پیش بھی نہیں کرتے ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ اٹ ٹو دس, یو نو, ہماری پریکٹیکل لائف میں جو باتیں ہوتی ہیں. آپ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے رشتے کو دیکھیں, ان کی رشتہ داری کیا تھی آپس میں؟ فرسٹ کزن تھے نا, جناب ابو طالب کے بیٹے اور عبداللہ کے بیٹے, جو دونوں بھائی تھے. تو آلریڈی یہ رشتہ تھا علی اور رسول کے درمیان, اور رسول اللہ کے کزن ہونا خود ایک فخر کی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کزن ہونا جو ہے وہ اختیار ہی نہیں تھا, جبر کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی فخر بھی کرے کہ بھائی ہم رسول اللہ کے انہوں کزن ہیں, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ کا کمال تو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے چوز کیا تھا کہ آپ رسول اللہ کے کزن ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے وہ جو رشتہ علی اور رسول کے بارے میں کزن کی حیثیت سے تھے, اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ بھائی علی مجھ سے قریب اس لیے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ جبری رشتے کے بنیاد پر, بلکہ رسول نے چاہا کہ علی کو اپنا داماد بنائے اس لیے کہ داماد بنانا, بیٹی دینا, یہ اختیار کی بنیاد پر ہے. رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا رشتہ اور میری قربت علی کے ساتھ اس جبری رشتے کے بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ میری رضا اور میری اختیار کی بنیاد پر ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. علی اور فاطمہ کی شادی میں وہ پہلو بھی ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. جب آئے ہیں علی رشتہ لینے کے لیے, تو رسول اللہ نے فوراً نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں اس پہ. جاتے ہیں اپنے گھر, فاطمہ سے پوچھتے ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا, اور سیدہ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے رسول نے کہا کہ یہ راضی ہیں. پوچھا ضرور, یہاں پر اگر آپ دیکھیں رسول اسلام کی حیثیت کیا ہے, رسول کے پاس دو ولایتیں ہیں وہاں پر. ایک جو ہے وہ ولایت ہے جو رسول کے عنوان سے ہے, ایک وہ ولایت ہے جو باپ کی حیثیت سے ہے. دونوں ولایتوں کے ہوتے ہوئے بھی رسول اسلام گھر جاتے ہیں, فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا ہے علی کا, آپ اس پر راضی ہیں یا نہیں؟ اور اس رشتے میں اور اس پروپوزل میں وہ رضا جو ہے وہ چاہے چہرے کے تاثرات سے ہوں یا الفاظ سے ہوں, وہ دونوں کافی ہے. اور اسی لیے رسول اسلام نے کہا ہے کہ سکوت رضاها, فاطمہ کی خاموشی اور چہرے کے تاثرات جو ہیں یہ ان کی رضا مندی کی دلیل ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار. تو یہ رشتہ خداوند عالم کی نظر میں بہت محترم ہے, دوسرے رشتوں کے مقابلے میں اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اختیار کی بنیاد پر ہے. سکون کی بات کی ہے خداوند عالم نے, لتسکنوا الیہا, کہ اس دواجی رشتے میں آپ کو سکون ملے گا. سکون کس طرح سے ملے گا, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسی آیت میں خداوند عالم نے بعد میں ایک جملہ کہا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, یعنی خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اس میرج کے انسٹیٹیوشن میں, اس دواجی رشتے میں تمہارے لیے سکون کے اسباب قرار دیے ہیں. بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. خدا کہتا ہے کہ ہر شادی میں میں نے دو جذبے پیدا کیے ہیں, ایک مودت کا جذبہ اور ایک رحمت کا جذبہ. پرانے مفسرین اکثر جو ہے اس کو تقسیم کر دیتے تھے کہ وہ مودت و محبت کا جذبہ جو ہے دلہن کے دل میں ڈالا ہے, اور رحمت کا جذبہ جو ہے شوہر کے دل میں ڈالا ہے تاکہ ذرا بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے. لیکن وہ پرانے مفسرین تھے, ماڈرن مفسرین اس کو ذرا پلٹ دیں گے حالات کے لحاظ سے. لیکن خیر اصل یہ ہے کہ یہ دونوں جذبے جو ہیں خداوند عالم نے دونوں کے دل میں پیدا کیے ہیں, مودت اور رحمت شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی ہے. یہ وعدہ ہے خداوند عالم کا صرف اس رشتے کے لیے نہیں اور شادی کے لیے نہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے. ہر وہ شادی جس میں مرد اور عورت کی بات ہے, شرط یہ ہے بہرحال جو شادی ہو رہی ہے وہاں خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مودت اور رحمت کا جذبہ دونوں میں پیدا کریں گے. اور اس کی ایک دلیل ہم آپ کو دیں گے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی ہندو کپل ہے یا عیسائی کپل ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف, دونوں کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نکاح نہیں پڑھتے ہیں ان کے, ان کا اسٹیٹس ایز میرڈ کپل جو پہلے تھا ان کے ہندو دین کے لحاظ سے یا عیسائی دین کے لحاظ سے وہ کنٹینیو کرے گا. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ اب کلمہ پڑھ دیا تو ان کا نکاح بھی پڑھ دیجیے, بھائی آلریڈی شادی شدہ ہیں یہ. نہ صرف یہ کہ شادی شدہ ہیں, اسلام سے مشرف ہونے سے پہلے جو اولاد تھی ان کو بھی ہم حلال ہی سمجھیں گے, اس لیے کہ ان کے قانون کے لحاظ سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ جذبہ جو ہے خداوند عالم نے ہر اس شادی میں قرار دیا ہے, یہ وعدہ الہی ہے. لیکن اینڈ دس از اے بگ لیکن, یہ وعدہ تو خدا نے کیا ہے کہ مودت اور رحمت کا جذبہ جو ہے ہر شادی میں خداوند عالم پیدا کرتا ہے, لیکن یہ ایک سرمایہ ہے جو آپ کے دل میں خداوند عالم نے رکھا ہے, لیکن اس کو محفوظ کرنا, اس میں اضافہ پیدا کرنا یہ آپ کا کام. اگر ان جذبوں کی قدر نہ کی آپ نے, ان جذبوں کو اگر مضبوط نہ کیا تو اس میں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ سرمایہ کم بھی ہوتا رہے. تو یہ وعدہ الہی ضرور ہے, لیکن یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی. وہ اکثر وہ ایک مشہور انگریزی میں کہتے ہیں نا, اے میچ میڈ ان ہیون. یہ سب باتیں جو ہیں کہنے کی ہوتی ہیں, اس کی بقا جو ہے دونوں کے اوپر ہے. یہ خداوند عالم نے مودت و رحمت کا جو جذبہ پیدا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اسے اور تقویت دیں, تبھی جا کے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اسی کے بعد آپ کو ازدواجی زندگی میں سکون حاصل ہوگا. صلوات پڑھنے کے بعد بات چونکہ شادی کی ہوئی ہے تو ذرا استخارے کے بارے میں بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. اکثر حضرات جو ہیں بہرحال شادیوں میں رشتہ بھیجنے سے پہلے یا رشتے کے آنے کے بعد استخارہ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت اور قواہت نہیں ہے, لیکن یہ لازم بھی نہیں ہے. اس لیے کہ استخارہ کے بارے میں جو قاعدہ ہے شریعت میں اسے کہا جاتا ہے الاستخارہ بعد الاستشارہ. مطلب یہ کہ آپ کو جو کوئی کام کرنا ہے, چاہے وہ بزنس ڈیل کی بات ہو رہی ہے, شادی کی بات ہو رہی ہے, پہلے جو نارمل طریقہ ہے چھان بین کا وہ آپ کر لیں. جو ہوم ورک آپ کو کرنا ہے اس سلسلے میں وہ لازمی ہے. جو صاحب نظر ہیں اس سلسلے میں, اگر کوئی آپ کو مثلاً بزنس میں جانا ہے, خود آپ کو معلومات نہیں ہیں تو ان سے جا کے پوچھے جو جانتے ہیں کہ بھائی یہ پروپوزل جو ہے یہ بزنس ڈیلز اچھی ہے یا نہیں ہے, وہ جو نظر دیتے ہیں آپ اطمینان ہو جاتا ہے تو اسی پہ عمل کریں, اس مشورے پہ عمل کریں صاحب نظر کے. ازدواجی رشتے میں بھی یہی ہے, چھان بین آپ پہلے کریے, उस शख्स के बारे में, फैमिली के बारे में, उसके अखलाक के बारे में, दोस्तों से पूछिए जो उसके हैं इर्द गिर्द, और आपको अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही है तो दैट्स इट, मशवरा आपने कर लिया, डिसीजन ले लें। लेकिन अगर मामलात फिर भी क्लियर नहीं हुए, मशवरे के बाद भी कन्फ्यूजन है, तो उसमें एक ऑप्शन है कि फिर आप इस्तखारा देखें। तो यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है, शरीयत में भी कहा जाता है अल इस्तखारा बाद अल इस्तिशारा, पहले आप कंसल्ट कर लें साहिब नज़र से, उसके बाद अगर बात फिर भी क्लियर नहीं होती है तो इस्तखारा का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सलावात पढ़ने के बाद लेकिन क्या इस्तखारा आपको गारंटी देता है कि शादी हमेशा ठीक ठाक रहेगी? इस्तखारा जो है ये कोई गारंटी के साथ नहीं आता है। इस्तखारा का मतलब सिर्फ ये है कि ये रिश्ता जो है इस लड़के और लड़की के दरमियान अच्छा आ रहा, लेकिन वो शादी जो है चलेगी, उन्हें सुकून और इत्मीनान हासिल होगा या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जज्बे रहमत और मुवद्दत को उन्होंने बाकी रखा है या नहीं। ये गारंटी के साथ इस्तखारा नहीं आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे सामने ही एक केस आया तलाक का, नौबत पहुंच गई तलाक की, तलाक पढ़ने की बात हुई तो वो हज़रत जो है मुझसे ही कहते हैं कि मौलाना है शादी से पहले इस्तखारा तो आप ही से दिखवाया था। अब हमें कितने याद तो नहीं रहते हैं ना, किसका इस्तखारा देखा, कितने इस्तखारे देखे, किसका निकाह पढ़ा है। तो हमने उसी में उससे कहा कि भाई हमने इस्तखारा तो देखा होगा, लेकिन इस्तखारा के साथ जो है ये लाइफ टाइम वारंटी नहीं आती है। ये जो तो आप समझ रहे हैं कि इस्तखारा अच्छा आया था इसका मतलब ये है कि आपकी शादी हमेशा चलेगी, रिश्ता अच्छा था लेकिन ये चलेगी शादी या नहीं चलेगी ये आप पर डिपेंड करता है। आप दोनों को जो है अपने रवैये को जज्बे मवद्दत और रहमत की बुनियाद पर चलाना चाहिए, फिर उसमें गारंटी है और उसमें बका है। सलावात पढ़ने एक बार मामलात को थोड़ा और सीरियस कर दें, ये तो इस्तखारा की बात की है ना। ये बताइए कि रसूल इस्लाम से बेहतर मैच मेकर कोई हो सकता है? सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, एक मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम है जैद बिन हारिसा, उनका भी बैकग्राउंड सुन लें तो ज़रा अच्छा है, उसमें और बातें भी आ जाती हैं उसमें ज़िमनन। जैद बिन हारिसा जनाब खदीजा के ग़ुलाम थे। जब शादी हुई है रसूलुल्लाह की जनाब खदीजा से, तो जनाब खदीजा ने जैद बिन हारिसा को गिफ्ट किया रसूलुल्लाह के लिए कि अब से ये आपके पर्सनल ग़ुलाम हैं, और बेसिकली समझिए पर्सनल असिस्टेंस के तौर पे वो हमेशा आप ही की खिदमत में रहेंगे। लेकिन ये मौला और ग़ुलाम का रिश्ता जो है बहुत ही जल्दी बाप बेटे के रिश्ते में बदल गया, इसलिए कि जैद बिन हारिसा ने देखा कि इनका रवैया, इनकी मेहरबानी, इनका ताल्लुक मुझसे तकरीबन बेटे की तरह है, तो अब वो उनको जो है अपने को ग़ुलाम और रसूलुल्लाह को आका नहीं समझते थे। और जैद बिन हारिसा पैदाइशी ग़ुलाम नहीं थे, स्लेव बाय बर्थ नहीं थे, इनके बाप का जो काफिला था सफ़र में एक जगह डाकुओं ने जब लूटा है तो उसमें इनको भी उठा के ले गए थे बचपने में, फिर ग़ुलामों के बाज़ार में बेच दिया और आखिर में ये जनाब खदीजा के ग़ुलामों में आए और उनसे फिर रसूल की खिदमत में आए। तो हारिसा जो बाप थे जैद के, वो बेटे की तलाश में हमेशा रहे। उन्हें ख़बर मिली कि अब आपका बेटा जो है वो मक्का में एक हैं बुज़ुर्ग, उनका नाम मोहम्मद है, उनका ग़ुलाम है। तो वो आए अपने शहर से, गालिबन यमन के रहने वाले थे, और पूछते हुए पहुँचे रसूलुल्लाह के पास। उस वक्त जैद वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने जब अपनी दास्तान सुनाई तो रसूल ने कहा कि भाई आप लेके जाइए, उसको खरीदने की बात नहीं है, जो आप सिचुएशन बता रहे हैं हम राजी हैं, आप अपने बेटे को लेके जाइए। जैद को बुलाया गया, बाप बहुत बहुत खुश हुए। अब बाप कहते हैं बेटे से, बेटा चलो घर। जैद ने कहा हम इन्हें छोड़ के आपके साथ नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह के अखलाक की बुलंदी की दलील दे कि वो शख्स जो है अपने बाप को छोड़ देता है। बाप बड़े नाराज हुए, उन्होंने एक जुमला कहा कि हमने तुम्हें एक लिहाज से डिसएसोसिएट कर दिया, अब कोई ताल्लुक मुझसे नहीं है। रसूल इस्लाम ने उसी वक्त खड़े होकर कहा कि आज से ये मेरा बेटा है, और उस दिन के बाद जैद को जैद बिन मोहम्मद कहा गया। यहाँ तक कि हिजरत के बाद जब आयात नाजिल हुई और ये एडप्शन का ये तरीक़ा जब इसको कैंसिल किया गया अरब मुआशरे में था, तब दोबारा जैद को फिर जैद बिन हारिसा कहा गया। तो ये हमसे बता रहे हैं कितने करीब थे जैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह से। मदीना में रसूल ने सोचा कि भाई इनके अब शादी भी होनी चाहिए। रसूल रिश्ता लगाते हैं किसके साथ? अपने कज़िन के साथ, ज़ैनब बिन्त जहश। और यहाँ पर ये जो रिश्ता था उसमें मकसद ये था कि रसूल इस्लाम चाह रहे थे ये तबाकाती ऊंच नीच का मामला ख़त्म करें। ज़ैद बिन हारिसा कुरैशी नहीं थे, हाशिमी नहीं थे, उस इलाके के रहने वाले नहीं थे, स्टेटस के लिहाज से साबिक़ ग़ुलाम हैं, जबकि ज़ैनब बिन्त जहश रसूलुल्लाह की कज़िन है, हाशिमी हैं, कुरैशी हैं। लेकिन रसूल शादी करते हैं जैद की ज़ैनब के साथ ताकि मुसलमानों का एहसास हो कि भाई ये ज़ात पात का जो मामला है ये इस्लाम में नहीं है। और यहाँ मैच मेकर कौन है? रसूल इस्लाम है। इस बात को याद रखें, ये पूरे वाकई का मकसद हमारा ये है। शादी हुई लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या? खुदा ने जज्बे मवद्दत और रहमत तो दिया दोनों को, लेकिन दोनों में जो है निभ नहीं सकी। ये मामलात यहाँ तक गए कि आखिर में तलाक की नौबत आई। खुदा वंद आलम ने जैद बिन हारिसा के निकाह को भी, शादी को भी और तलाक का भी जिक्र कुरान में मिलेगा। इत्तेफाक़ से ये या मदरसे के टीचर्स अगर हैं तो उनके लिए क्विज का क्वेश्चन मिल जाएगा कि वो सहाबी रसूल जिसका नाम कुरान में आया है वो कौन है? वो है जैद बिन हारिसा, इसका नाम आया है उसके शादी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये शादी चली नहीं। मेरा पॉइंट यहाँ क्या है कि अगर रसूल इस्लाम जैसे मैच मेकर भी हों, आप इस्तखारा में गारंटी ढूंढ रहे हैं? इस्तखारा कोई गारंटी नहीं देता है कि आपकी शादी चलेगी। रसूल इस्लाम से बेहतर कोई मैच मेकर नहीं हो सकता है, लेकिन उस शादी की बका जो है रसूल के उस इरादे पे नहीं है बल्कि जैद और ज़ैनब के इरादे पर है। तो लिहाजा ये समझ लीजिए कि ये जज्बे ये मवद्दत और रहमत की बुनियाद पर आपको ये रिश्ते को बाकी रखना है। सलावात पढ़ने एक बार, तो आइए इख्तिताम की तरफ कि ये मवद्दत है क्या, रहमत का जज्बा क्या है। देखिए अरबी में दो अल्फाज हैं, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। मोहब्बत की बुनियाद जो है ज़ाहिरी हुस्न और जमाल है, ये दौलत और सरवत है या जाह मकाम है और हैसियत है, ये जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं जिसे इंसान पसंद करता है उसकी बुनियाद पर मोहब्बत होती है। इस पसंद को लोग कहते हैं मोहब्बत। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं आरिजी हैं, दे आर टेम्प्ररी। दौलत आज है कल नहीं होगी, हुस्न अभी है लेकिन बुढ़ापे में तो अगरचे बहुत से बुज़ुर्ग हजरात से पूछिए सबसे खूबसूरत कौन है, कहेंगे हमारी जोजा है, चाहे वो 60 साल की क्यों ना हो, वो सही में मुवद्दत है। अगर सिर्फ वो ज़ाहिरी मोहब्बत होती तो वो बात ख़त्म हो जाती। तो ये मोहब्बत की बुनियाद जो है ज़ाहिर पे है। मुवद्दत को जो कहते हैं ये दर हकीकत बातिनी फजल और कमाल और हुसन से ताल्लुक़ रखती है। इंसान जब अख़लाक़ी फ़ज़ाइल को देखता है लोगों में, उनके रवैये को देखता है, तो वो फिर उनसे मुतासिर होता है। मुतासिर होने के साथ साथ फिर वो मुवद्दत का जज्बा जब आता है उसमें मोहब्बत भी शामिल है। लेकिन मुवद्दत इसलिए कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ आप हुस्न जमाल को देख के, दौलत और सरवत को देख के, जाह मकाम को देख के आपको ये बात पसंद आ गई। लेकिन मुवद्दत का जज्बा ये होता है कि आपने इतना पसंद किया उनके किरदार और अखलाक और फ़ज़ाइल को कि आपने तहैया कर लिया कि अब हम जो हैं उनकी इत्तबा और पैरवी करेंगे, अपने को उसी नहज पे ढालेंगे जो उनकी पसंद हो। और इसीलिए आप देखें कि खुदावंद आलम जो है जहां अहले बैत की बात करता है, वो जो हुक्म रसूल को दिया गया है कुल लास अलकुम अलैहि इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा नहीं है, बल्कि है इल्लल मवद्दतु फिल कुर्बा। इसलिए कि मवद्दत में मोहब्बत का जज्बा भी है लेकिन साथ साथ महबूब की इत्तबा और पैरवी का जज्बा भी है। आप अपने को ढालना चाहते हैं उस किरदार के साथ जिससे आप मोहब्बत करते हैं। इसलिए खुदावंद आलम ने अहले बैत के सिलसिले में मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि मुवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सलावात पढ़ने के बाद मोहब्बत जो है एक नेचुरल चीज़ है। जहाँ भी आपको फ़ज़ाइल नज़र आएंगे, अच्छाई नज़र आएगी, आपका दिल जो है उस तरफ बहरहाल झुकेगा। तशय्यो क्या है? शियों में और मोतज़ली सुन्नियों में क्या फ़र्क? सुन्नियों में एक फ़िरका था, तीसरी सदी के बाद ख़त्म हो गया, वो उन्हें मोतज़िला कहते थे। उनका एक इम्तियाजी अकीदा ये था कि रसूल इस्लाम के बाद अगर उम्मत में कोई अफजल है तो वो अली इब्न अबी तालिब है, नंबर वन। लेकिन उनसे पूछिए कि भाई खलीफा की तरतीब क्या है, तो वो अली को ले आएंगे चौथे नंबर पे। उनसे आप बहस करें तो वो कहेंगे कि भाई ये किसने कहा कि खलीफा के लिए सबसे अफजल होना चाहिए, वो मेयार ही अपना उन्होंने घटा दिया उन्होंने, वो माकूल बात नहीं है। लेकिन ये वो फ़िरका था जो मानता था कि रसूल के बाद अगर कोई अफजल है तो वली है। अली को अफजल मानना तशय्यो नहीं है, वो सिर्फ मोहब्बत का लेवल है जहां फजाइल को देख के मजबूर हो जाते हैं। तशय्यो का नाम मुवद्दत है जो अली के फजाइल के साथ साथ उनकी इत्तबा और पैरवी भी करते हैं। आपके जो सूफी हजरात हैं वो क्या हैं? मोहब्बत की बात करते हैं ना अहले बैत के बारे में, बल्कि गैर मुस्लिम भी। लुबनान के जो वो ईसाई हैं, चूंकि वो अरब हैं, अरबी ज़बान जानते हैं, अरबी तारीख जानते हैं, वो जब अमीर अल मोमिनीन की सीरत को देखते हैं, नहल बलाओ को देखते हैं, बहुत ही मुतासिर होते हैं। जॉर्ज जोरदाक ने जो किताब लिखी थी अली के बारे में, उनवान जो दिया है सौतुल अदालतुल इंसानिया, अली द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। मोहब्बत करता है वो, लेकिन वो शिया नहीं है। हम सिर्फ आपके इस स्टेटस को हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम अपनी कदर करें। फजाइल को मानना तशय्यो की अलामत नहीं है, ये तो फॉर गिवन है। हिंदू शोरा में मिलेंगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अली के बारे में कितने अशार कहते हैं, उनमें और हम में फर्क क्या है? सूफी हजरात से हमारी शिकायत यही है ना कि आप कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत करते हैं लेकिन अकीदा जो है आप अबुल हसन आशारी से लेते हैं, आप कहते हैं इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करते हैं लेकिन फिक जो है अबू हनीफा से लेते हैं, आप कहते हैं अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं लेकिन हदीस आपके यहाँ कोई हमारे यहाँ इम्मा से नहीं है, तो आखिर ये मोहब्बत किस चीज की है? ये एक मिसाल हम दे दें, आप हजरात से वक्त के लिहाज से माजरत चाहेंगे लेकिन बाहर बात निकली है तो एक पॉइंट और। गालिबा ऑस्ट्रेलिया की भी वही सिचुएशन है जो कनाडा की है, हमारे यहाँ अभी तक जो है वो कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, बरतानिया के जो बादशाह हैं पहले मलका थी ज़माने तक, अभी भी आप देखें वहाँ के कोइंस में मलका की तस्वीर है, हमारे नोट्स में मलका की तस्वीर है, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए उसकी तस्वीर देखेंगे आप, किसी भी कैनेडियन से पूछिए भाई कहेंगे हाँ हम बहुत मोहब्बत करते हैं इसे, लेकिन इख्तियार किसके हाथ में है? वो मलका या जो बादशाह अभी हैं उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा इख्तियार जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और उसकी कैबिनेट के हाथ में है और पार्लियामेंट के हाथ में है। हम सूफी हजरात से ही कहते हैं आपने जो है अहले बैत को वो तस्वीर बना लिया है, हर जगह लगा तो देते हैं लेकिन न अकीदे में उनको मानते हैं, न फिक में उनको मानते हैं, न तफसीर में उनको मानते हैं, न हदीस में उनको मानते हैं। तशय्यु इसकी अलामत नहीं है। तशय्यु का मतलब ये है कि आप हर चीज़ में अहले बैत की पैरवी की कोशिश करें। सलावात पढ़ना है, शबे जुमा में हम लोग जो ज़ियारत पढ़ते हैं ज़ियारत वारिस, उसका आखिरी जुमला और फिर मसाहिब की तरफ आएंगे, उसमें एक पैसेज है जहाँ छठे इमाम ने की तालीम है ये ज़ियारत, किसी आलिम की लिखी हुई नहीं है, जिसमें ये कि तुम अल्लाह और रसूल अंबिया और मलाइका को गवाह बनाओ और उसके बाद ये कहो कि हम कल्बी लि कल्बिकुम सिल्म व अम्री लि अम्रिकुम मुत्तबा। इस जुमले पर ज़रा गौर करें आप थर्सडे को जब पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा दिल जो है आपके दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ दिल की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हम आपके फजाइल को मानते हैं, वो अमरी ले अमरी को मुत्तबे, मेरा अमर मेरा फैसला मेरा हुक्म मेरा नहीं है बल्कि आपके अमर के और हुक्म किताब है। अब ये दिल जो है ये हमारा नहीं है, ये हुसैन का है, फैसला मेरा नहीं है, फैसला हुसैन का है। ये जब एटीट्यूड हो तब जाके हम समझेंगे कि सही मानों में हम तशय्यो के उस मंजिल पे फायज हैं, और इसी को तशय्यो कहते हैं। मवद्दत बे माने ये कि हम इत्तबा करें। अक्सर हजरात जो हैं कहते हैं मौलाना क्या करें दिल नहीं मानता है, अरे भाई तुम्हारा दिल अब है भी नहीं तुम्हारा, अगर तुम सही मानों में शिया हो तो ये तुम्हारा दिल नहीं है, इट बिलोंग्स टू हुसैन इब्न अली। अगर हुसैन का दिल है तो फिर बात ख़त्म हो गई, फैसला फिर आपका नहीं होगा, चाहे शादी का मामला हो और या कोई और मामला हो जिंदगी में, और यही इम्तहान है हमारा इत्तबा और पैरवी अहले बैत के लिए। सलावात पढ़ने के बाद शोहदाए करबला में बस दो मिसालें पर मसाइब पे हम ख़त्म करेंगे। मुस्लिम बिन औसजा और हबीब बिन मज़ाहिर दोनों कूफा के बुज़ुर्गों में से थे, एज के लिहाज से भी सीनियर थे ये लोग, और इनका एहतराम था कूफियों के दरमियान भी। मुस्लिम बिन औसजा चूँकि दो तीन हमले हुए थे पूरे दिन, जहाँ कलेक्टिव हमला हुआ था अस्हाबे हुसैन पर, और अस्हाबे हुसैन ने उस हमले को रोका है, और यजीदी लश्कर ने रिट्रीट किया है, उसमें एक बार जब गर्द गुबार बैठा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीन पर जो हजरात शदीद ज़ख्मी पड़े हुए हैं उसमें से मुस्लिम बिन औसजा भी थे। ये और हबीब दोनों, हबीब बिन मज़ाहिर, एक दूसरे के दोस्त थे। हुसैन इबन अली और जनाब हबीब दोनों साथ जो हैं जाते हैं मुस्लिम बिन औसजा के करीब। एक रिवायत के लिहाज से ये तन्हा करबला नहीं आए थे, इनकी गालिबन ज़ौजा या कनीज भी थी और साथ साथ बच्चा भी था, एक बेटा था। मुस्लिम चूँकि करीबी दोस्त थे हबीब के, हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं कि भाई तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो हमें ज़्यादा मौका तो नहीं मिलेगा, हम भी उसी रास्ते पे चलने वाले हैं, लेकिन हमें शायद मौका मिले, कोई वसीयत हो तो बताओ ताकि हम उस पर अमल करें। मोमिन की आखिरी वसीयत पर अमल करना अजर अजीम है। मुस्लिम इब्न औसजा ने ना अपने लिए बात की, ना अपने जौजा और बच्चे के लिए बात की। आखिर वक्त में मुस्लिम का दिल हुसैन का दिल था। एक ही वसीयत करते हैं कि मेरी कोई वसीयत नहीं है, बल उसी का बिहादा, इशारा करते हैं हुसैन इब्न अली की तरफ कि अब हबीब कुछ करना है तो मेरी वसीयत यह है कि ये न हो कि तुम जिंदा रहो और वो जख्मी हो जाए। इस पर हबीब ने कहा यकीनन आपकी वसीयत पर हम अमल करेंगे। और उसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील की रूह जो है मले आला की तरफ परवाज कर जाती है। जोहर का वक्त आता है, जनाब हुसैन इब्न अली ने अपने असहाब से कहा कि इन यजीदियों से कहो कि जोहर का टाइम है। अबू सैद सादावी ने ख्वाहिश की थी कि मौला एक बार और आपके पीछे इक्तदा में नमाज पढ़नी है, इन शोहदा के ख्वाहिशात को भी देखें। इमाम ने कहा कि यजीद लश्कर से कहो कि थोड़ी देर के लिए जंग रोक दी जाए, नमाज पढ़ ली जाए। जिस पर उनमें से एक कमांडर था, उनका हसीन बिन नमीर मलऊन, वो ये कहता है बुलंद आवाज में कि हुसैन आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। इस मलून को यह एहसास नहीं था कि मुसलमानों की नमाज चाहे वहाबियों के क्यों न हो उसमें तशहुद में आले मोहम्मद पर सलावात होती है, और आले मोहम्मद में कोई इख्तलाफ नहीं है कि हुसैन इब्न अली अहल बैत और आले मोहम्मद के जुज हैं। जनाब हबीब से ये बर्दाश्त न हुआ अपने इमाम और दोस्त की तौहीन, तलवार को निकालते हैं, हसीन बिन नमीर पर हमला कर दिया, उसको घोड़े से गिराते हैं, लेकिन उसका लश्कर आगे आता है और उसे बचा के ले जाता है। लेकिन हबीब जो सबसे ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी थे हुसैन के, इनसे ये तौहीन इमाम के बर्दाश्त न हुई, अपने जंग को जारी रखते हैं। यहाँ तक कि जब ज़ख्मी हो जाते हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं, ये ज़ईफ़ुल उम्र मुजाहिद जब बैठा है, एक मलऊन आता है पीछे से नेज़े से वार करता है, इस तरह से कि नेज़े की अनी जो है सीने पे आके बाहर निकलती है। अज़दारों ने हुसैन जनाब हबीब जो है इस सदमे को और ज़ख्म को बर्दाश्त न कर सके, वो कातिल आगे बढ़ता है और जनाब हबीब के सर को तन से जुदा करता है, और जुदा करने के बाद अपने घोड़े की गर्दन में बांध देता है। अज़दारण हुसैन ये जब काफिला चला है कूफा जाने के लिए, वो कातिल भी उसी सर को इस तरह से लटकाए हुए अपने साथ लेके चला है। जब कूफा के दरवाजे में ये शामिल हुए हैं, एक जवान की नज़र उस सर पे जाती है और वो कातिल के घोड़े के करीब आता है, साथ साथ रहा, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के दरबार में भी पीछे पीछे रहा। جب دربار سے یہ قاتل نکلا ہے تو مڑ کے پوچھتا ہے کہ جوان تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس وقت وہ جوان کہتا ہے کہ میرا نام قاسم بن حبیب ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرے بابا کا سر جو ہے تمہارے گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے، خدا را مجھے دے دو کہ ہم جا کے دفن کریں۔ عزاداران حسین قاسم بن حبیب سے صرف اتنا کہیں گے، ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ، اس سواری پر عابد بیمار کے چہرے کو دیکھو، یہاں صرف ایک سر کا معاملہ ہے لیکن عابد بیمار کے سامنے بابا کا سر ہے، چچاؤں کا سر ہے، بھائیوں کا سر ہے، 18 بنو ہاشم کا سر ہے۔ اس صدمے کو زین العابدین نے کس طرح سے برداشت کیا؟ لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس قلعے با قبول فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں شیعان علی اور آل علی میں سے قرار دے۔ خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
حسین، یا 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 حسین، یا